उद्विग्न राधे तंग माम चरणं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परामीष्टमत्यं ततो द्रुत्यगोप्या। गुरु महाराज जी राधा दामोदरष्टक के संबंध में बतला रहे हैं, यह अष्टक नित्यकालीन है, किसी का द्वारा रचित नहीं है, स्वयं प्रकटित स्वयं प्रकाश है। सृष्टि के आदि में वन मुनि सप्तव्रत मुनि नारद और शौनक ऋषि के संवाद में पद्म पुराण के अंतर्गत नारद ऋषि और शौनक आदि संवाद में शौनक आदि पूछ रहे हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं। उसमें सत्यव्रत मुनि एकदम सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने इसको स्तव स्तुति को की थी। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी इस स्तव की टीका लिखी है, वो भी दिग्दर्शनी टीका है, केवल दिग्दर्शन मात्र, विशेष रूप में इसका बतलाना व्याख्या करना बहुत बहुत कठिन। इन्होंने संक्षेप में दिक् का दर्शन कराया है, अर्थात बहुत संक्षेप में ये दिग्दर्शन सूत्र मात्र दिया है। इस लीला को इस कीर्तन को समझने के लिए सबसे पहले समझना चाहिए, बहुत ये ऊंचा तत्व है। हम लोगों के आचार्य लोग इससे भी पहले आचार्यों जी से पहले शंकर जी इन लीलाओं का चिंतन करते थे। अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करते थे। ये लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक लीला है मंत्र उपासनामयी और एक है स्वारस की। ये लीला मंत्रमयी उपासना उसको कहते हैं जैसे एक हार गुथा हुआ है, उसमें हजारों फूल हैं, उसमें एक फूल को एक कड़ी को एक मणिका को मंत्र उपासना कहते हैं। एक जो मणि है या एक पुष्प है इसमें से, तो इसको कहेंगे मंत्र उपासना। और लीलाओं का लगातार जो चेन है, लगातार एक भी कहीं से विच्छिन्न नहीं है, पूरा माला मिल करके सब मिल करके एक हुआ, ऐसे लाखों सहस्त्रों अगिनत लीलाएं मिल करके सवेरे से शाम तक और फिर सवेरे तक, सवेरे से आरंभ किया प्रातः काल से और सब लीलाओं को पार करते हुए अंत में फिर वहीं पर उपस्थित हुए प्रातः काल लीला में। एक केवल रात में रासलीला एक रात में हुई, किंतु इस ये रासलीला मंत्रोपासनामय नहीं है, इसमें बहुत सी लीलाएं हैं। इन लीलाओं को करने में कृष्ण को और गोपियों को ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर चार एक हजार चतुर्गुण, इसमें जाने कितनी रात और कितनी दिन हो जाएगा, इतना दिन लगा। कृष्ण की आयु इस जगत में 125 वर्ष की थी और 125 से भी गुणा कर दिए लाख का, इतना वर्ष तक ये लीला हुई। ये लीला भी इसमें कुछ कमी रह गई, प्रातःकालीन लीला नहीं है, इसके बाद में पूर्वाह्न लीला नहीं है, मध्यान्ह लीला नहीं है, मध्यान्ह वाली नहीं, अपराह्न वाली नहीं है, सायं की लीला नहीं है, इसके बाद में प्रदोष वाली लीला नहीं है, केवल नैष लीला। एक रात में नैष लीला केवल रात की लीला है। ए, जो सोएगा उसको उठा दो, तो उठा करके बेंच पर खड़ा कर दो, नैष एक लीला मात्र। अब कृष्ण का जन्म हुआ और वहां से लेकर के रास लीला तक आठ भागों में उनकी लीलाएं विभक्त कर दी गई। आठ ये प्रहर कहलाता है। आठ प्रहर की लीला को एक साथ में संयुक्त करके एक आदमी बैठ गया, शंकर जी बैठ गए और बैठ करके सवेरे से निशांत लीला से बैठे और एकदम निशांत लीला तक बैठे ही बैठे रह गए। उनको फुर्सत नहीं मिली उठने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। हमारे गोस्वामी लोग इसी को करते थे, हम लोगों के लिए ये संभव पर नहीं, संभव पर नहीं। हम लोग के हृदय में संसार की अष्टकालीय लीला चल रही है। बैठ जाएंगे हरिनाम करने के लिए तो संसारिक अष्ट प्रहर लीला आरंभ हो जाएगी। कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए ये संभव है। इसलिए साधारण साधकों के लिए अधिक तो वो कर नहीं सकता। अच्छा तो मंत्रमय उपासना, एक कड़ी एक फूल लेकर के बस उसी का चिंतन करो, उसमें से दामोदर लीला एक बहुमूल्य रत्न है, इस चीज को समझो। नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजना। यद्यपि ये भी मंत्रमयी उपासना ठीक नहीं है, ठीक मंत्रमय किंतु है, इसमें भी कुछ लीलाओं का चेन है। मंत्रमयी उपासना उसको कहते हैं एक लीला का बस बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण हैं, दोनों आलिंगित हैं, कृष्ण के हाथों में बांसुरी है, मंद मुस्कान फेर रहे हैं, राधा जी उनको पान की बीड़ी दे रही हैं, जमुना जी का सुंदर उपकूल है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, भौरे उसमें गुंजार कर रहे हैं, सुंदर ठंडर ठंडी ठंडी बयार बह रही है, उसमें सुगंध से वो मतवाला हो रहा है, उसमें मयूर उस सुगंध से ही और उस दृश्य को प्राकृतिक दृश्य देकर के नृत्य कर रहे हों, कोयल कुहू कुहू कर रही है, पपीहा पपीपा पीपी पी कहाँ वो कर रहा, उसमें हिरणों के बच्चे फुदक रहे हैं, वो लोग भी कृष्ण की तरफ में चल रहे हैं, सारी प्रकृति मानो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बैठ करके ये ध्यान कर रहे हैं, ये मंत्र उपासना भी। इस तरह से इस लीला को इस रूप में समझो। जो गुरुमुख से इन चीजों को नहीं सुने हैं, इन सब का अर्थ नहीं समझेंगे, तो अभी हम लोगों ने राधिका कृपा कटाक्ष नंदनाष्टकम ये जो पाठ किए, ये तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे भाव हैं, वो तो बिरले इस जगत में है। तभी हम लोग इसका कीर्तन करते हैं जो लोगों को लोभ कुछ हो जाए, इसलिए हम सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रतिदिन इसका सवेरे भोर में उठ करके इसका पाठ होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए और कीर्तन में भी इसका होना चाहिए, इन भावों को ग्रहण करना चाहिए। ये राधा दामोदर जी की भावमयी सेवा है। अर्चन तो वो है अर्चन कनिष्ठ अधिकारी का जो नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी अर्चन करने वाले कनिष्ठ ही हैं, ऐसा मत समझ लेना। रूप सनातन जी गोविंद गोपीनाथ की सेवा की, हमारे गोपाल भट्ट जी ने राधारमण की सेवा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोकुलानंद की सेवा की, श्यामानंद प्रभु जी ने उनकी सेवा की, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर की सेवा की, तो ये सब लोग कनिष्ठ मार्गीय अर्चक नहीं हैं। ये लोग ऊपर से ऐसा दिखता है किंतु भीतर से वो अत्यंत भावमयी सेवा के चूड़ांत स्थिति पर वो लोग हैं। यदि संसारी कामनाओं को छोड़ करके दिवारात्र गुरु की सेवा करेंगे, इन चीज़ों को जैसे अभी हम लोग पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चल रहे हैं कार्तिक महीने में, इस तरह से यदि ठीक से चलें तो ये सब हृदय में स्फूर्ति होगी, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। विशेष करके एक महीने का इसलिए किया गया, याद नहीं रहने पर भी पुस्तक देख करके भी यदि ये पाठ करे तो याद हो जाएगा, तो सारा बस्तर इसका कीर्तन करता रहेगा, इसलिए इस सब की व्यवस्था की गई। गुरु जी कहते थे ये घड़ी में हम लोग 4 बार दम देते हैं, इस घड़ी में दिन रात में 1 बार दम दिया जाता है ना, इन घड़ियों में आजकल तो ऑटोमेटिक कर दिया है। तो वो जब अष्टकाली लीला का जब समय होगा तब तो वो ऑटोमेटिक रहेगा, अभी हम लोगों को अभी दम देना पड़ता है। तो ये दम है क्या, गुरु जी पहला दम देते हैं नवदीप धाम परिक्रमा में 9 दिन में, उसका दम चलता है रथ यात्रा तक, रथ यात्रा में कितना दिन का होता है वो भी 9 दिन का या 10 दिन, तो 9 दिन वो हो गया। इसके बाद में ये कार्तिक के महीने में और एक क्या व्यास पूजा इत्यादि, इस सब में व्यवस्था रखते थे जो साधकों के चित्त को ठीक तरह से उसमें दम दिया जाए, हरि कथा का इंजेक्शन दिया जाए और सचमुच में वे लोग आदर्श भक्त हों और उसी प्रकार से अपने जीवन का गठन करें, जो इन दिनों में गठन करने से सारा वर्ष चलेगा वैसे, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। तो इसको प्रतिदिन पाठ करने की विधि सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, राधिका प्रतिपान विप्रा पूजयेत कार्तिके जात तुज तस्य तुष्यति तत्प्रत्यय श्रीमान दामोदर हरि। जो लोग 1 महीने तक श्रीमती राधिका की प्रतिमा उनकी पूजा करेंगे कार्तिक के महीने में और राधिका जी के साथ में कृष्ण भी रहें, तो उससे दामोदर हरि प्रसन्न हो जाते हैं, राधिका जी के पूजन करने से ही दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्यम दामोदराकर्षि पठेत सत्यव्रतादिकम सत्यव्रत आदिकम, इन सब लोगों के द्वारा ये पठित है, इसलिए इसको प्रतिदिन इस सूत्र का पाठ करना चाहिए, राधा दामोदर का अर्चन करना चाहिए। जो स्वयं लोग नहीं कर सकते वो मंगल आरती और ये सब चीज़ों को देखेंगे, उसमें सब सेवा करेंगे, साधुओं के संग में रहेंगे, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ चीज़ है। किसी वस्तुओं को छोड़ना ये आवश्यक है, जैसे निद्रा, शयन, आलस्य, प्रमाद, अपराध, अनर्थ, कुसंग, बेकार की कथाएं, वाक्वेग, मनोवेग, क्रोधवेग, जिह्वावेग, उपरवेग, उपस्थवेग, ये सब छोड़ना है। खान पान में भी छोड़ने की बातें कही गई, किंतु ये गौण है, मुख का गौण है ये समझो, इसको छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। किंतु ये छोड़ना किस लिए, इसलिए कि इनके छोड़ देने से हृदय निर्मल होने से ये सब चीज़ों साधुओं के संग में हरि कथा, भागवत का श्रवण, राधा नमोदर जी का चिंतन, तीर्थों में परिभ्रमण साधुओं के संग में, वहाँ पर हरि कथा वैसी होगी, ये मुख्य है, इससे कृष्ण प्रेम होगा, ये सब साधन है, इसलिए ये सब करना जरूरी है। इसके लिए वो सब छोड़ने की जरूरत है जो उसमें समय बर्बाद न हो। प्रतिवर्ष तक खूब विस्तार में होता है, अब संक्षेप में ही हम कुछ करेंगे, जैसे 7 दिन के अंदर में ये भी कि 8 दिन में ये भी समाप्त कर दिया जाए और इसके बदले में भजनाष्टक क्या भजनामृत है या दूसरे जो चीज़ें हैं हम साधकों के लिए जो उचित है उसका हम लोग पाठ करेंगे, और शाम को तो वैसा पाठ होता ही है, और यदि होगा तो दोपहर में भी कुछ, या जैसे हम लोगों का 3 बार होता है वैसा 3 बार होता रहेगा। शाम को हम समझते हैं कि अब कुछ पहले ही बैठा जाए, 5 बजे न बैठ करके 4:30 बजे से कीर्तन आरंभ हो, 4:30 से 5 बजे तक, 5:15 बजे तक होकर के ये दोपहर को यदि 4 बजे बैठ तो और अच्छा है। बाद में हम लोग जाएंगे तो और तो विशेष काम नहीं, तो 4:00 से 5:00 बजे तक हो जाएगा, फिर रात में भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। ब्रह्मचारी लोगों का विशेष कार्य है, कोई आलस्य मत करेंगे, रात का काम रात में समाप्त कर देंगे, सवेरे में कोई काम ना हो, नहीं तो जाने आने में और पाठ में असुविधा सुनेंगे। आज तभी 7:45 हो गया, 7 बजे हम लोग आज चलेंगे विश्राम घाट में, अभी चलेंगे 7 बजे, और वहीं पर हम लोग 1 महीने के लिए कार्तिक व्रत के लिए हम संकल्प करेंगे। वी विल गो एट अबाउट 7 टेक विश्राम, आफ्टर दैट वी विल टेक विश्राम। हम लोग 1 महीने के बाद में विश्राम लेंगे, इधर में विश्राम नहीं लेंगे। 1 महीने तक खूब अच्छी तरह से हम लोग भक्ति का साधन करेंगे, कुछ सीखेंगे और समझेंगे और साधन करेंगे। अभी संक्षेप में इसका एक मूल अनुवाद कह करके आज समाप्त करूंगा और कल से नियमित भाव से चलेगा। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप, मैं सच्चिदानंद जो ईश्वर हैं, समस्त केवल ईश्वर नहीं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, सबके आदि, उनका कोई आदि नहीं, वो स्वयं अनादि और अखिल रसामृत सिंधु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, षडैश्वर्यशाली हैं, बड़े कृपा वत्सल हैं और उज्ज्वल लीलमणि में कथित धरिल लील इत्यादि जो ललित नायक इत्यादि हैं, समस्त गुण उनमें परिपूर्ण रूप से हैं। भक्तिरसामी सिंधु में 60 जो गुण हैं उनमें भी परिपूर्णतम वो जो हैं, ऐसे ये कृष्ण हैं गोकुल में खेलने वाले, घर घर में दधि दूध की चोरी करने वाले, ये सच्चिदानंद हैं, साधारण नहीं हैं। इसलिए उनको सतव्रत मुनि जी प्रणाम करें, नमामि ईश्वरम, उनको ईश्वर मान करके प्रणाम करते हैं। इसलिए इसमें मालूम होता है जो इन्होंने दासरस से आरंभ किया, दासरस, यदि दास्य रस न रहे तो किसी को प्रणाम नहीं करेगा। सखा लोग परस्पर कृष्ण को मधुमंगल श्रीदाम आएंगे ना तो उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अरे तरे करते हुए अभी तक सो रहा है, और उठ करके कूद करके उसके पलंग पर चढ़ जाएंगे और उसको अंक में लेकर के उठा लेंगे, कोई प्रणाम नहीं। यशोदा मैया तो जरूर प्रणाम करती होगी ना कृष्ण को, आनंद बाबा, वो नहीं, उठो लाल आंख को खोलो, पानी लाई, मुख धो लो, अरे देखो भी क्या देखो पूर्णमासी जी आ गई हैं, तुम्हारे आशीर्वाद, तुमको आशीर्वाद, और तुम अभी सो रहा है, और कृष्ण करके जितने उठाती हैं उतने ही, और ये कौन है, कौन नारायण बलदेव प्रभु इत्यादि सब जितने सर्वेश्वरेश्वर हैं, षडैश्वर्यशाली भगवत तत्व हैं, इनके भी मूल हैं, जो गोकुल में अभी सो रहे हैं, और उनको यशोदा जी पूर्णिमा जी के साथ में आकर मुखरा को साथ लेकर के, अंबिका और सब दूसरों को साथ लेकर के बलैया देने के लिए सोने के थाल में कपूर की बाती लेकर के वहाँ पर खड़ी है, उनको उठा रहे। इसके पहले जो रात में बच्चों के साथ में जाकर के घरों घरों में नवनीत चुराया, मक्खन चुराया, किसी ने पकड़ लिया, कैसी कैसी सब लीलाएं हुई, अबोध एकदम बच्चे जैसे, सरल जैसे बच्चे, ये गोकुल में ये कौन है, यही है नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इसलिए सखा लोग यशोदा मैया ये प्रणाम नहीं करती, तो छोटी छोटी ग्वारियां जो गोपियां हैं वो तो जरूर प्रणाम करती होंगी, वो अर्चन जरूर करती हैं। हाँ, नैनो प्लार से हम समझते हैं कि गुरु जी रहते तो कहते जे नहीं, कृष्ण ही अपने नैनों से उनकी आरती उतारते हैं, इसलिए प्रणाम का वहाँ नहीं है। किंतु तो भी ये सत्यव्रत मुनि अधिकार में अभी दास है, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कैसे हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, गोकुले भ्राजमानम लसत कुंडल, गोकुल में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। भ्राजमानम माने क्या, भ्राजति, अत्यंत सुशोभित। कैसे सुशोभित हो रहे हैं, कृष्णचंद्र जी अपने पलंग से उठे और उठ करके यशोदा मैया की के यहाँ गए, यशोदा मैया दूध मंथने में व्यस्त है, कृष्ण का स्मरण नहीं, और गोविंद दामो धर्माधवेती कर रही। इतने में कृष्णचंद्र पलंग से उतर कर, कैसे उतरे, उतरने की शक्ति ने पेट के बल में बड़ी मुश्किल से ऊहा करते हुए रोते हुए उतरे, आंखों में आंसू नहीं, तभी मैया मैया जोर से कर रह करके उतर रहे हैं, तभी मैया नहीं सुन रही है, तो धीरे धीरे अभी निद की खुमारी है, खुमारी मैंने की बंगला त्या खुमारी आवेश, खुमारी है, अभी लड़खड़ा करके चल रहे हैं, अभी चलना भी नहीं आया, और सुंदर कैसे वस्त्र सब सजे हैं, कुछ नहीं, नंग धड़ंग, बस यदि करधनी एक है भैया और कुछ नहीं, कानों में कुंडल हैं, और वहाँ से गोकुल में वहाँ पर आए, और तब यशोदा मैया जी ने देखा, गोद में बिठाया, और इसके बाद में दधि दूध को उतारने के लिए गई, और अंत में इन्होंने उसको दंड देना चाहा, और यशोदा मैया आगे पीछे पीछे भग रही, और कृष्णचंद्र जी आगे आगे भग रहे हैं, ये पीछे सब आएगा। उस समय जब चल रहे हैं कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मैया की तरफ में देखते हैं कभी, और मैया हाथ में एक छोटी सा बेंत की छड़ी लिए हुए और उनके पीछे पीछे चल रही हैं, स्थूल शरीर, कृष्ण छोटे पतले बड़े गठीला शरीर भाग रहे हैं, पीछे से ये दौड़ रही हैं, कुंडल झलक रहे हैं, झलक माने क्या रहे, कपलों का बार पुनः पुनः चुंबन करते हैं। इन समस्त आभूषणों में यहाँ पर सत्यव्रत मुनि मुग्ध हो जाते हैं, ये कुंडलों को की शोभा देख करके, कुंडलों का सौभाग्य देख करके, ये कृष्ण के गंडस्थल को इनकी मैया चुंबन करती है, या तो और कोई चुंबन करते हैं, और इस कुंडल को निरंतर दिन रात चुंबन करने का सौभाग्य होता है। कृष्ण के जो कुंडल हैं उनमें कृष्ण के कपोलों की आभा झलकती है, और जब दलकते हैं वो चलते हैं हिलते हैं तो और उसकी शोभा बढ़ जाती है। जसोदा भी ओलू खला धाओ मान, जसोदा के भय से ये पर ब्रह्मा सच्चिदानंद भगवान आज डर के मारे भगे, ओखल से लंफ दिया, जसोदा भीयह, जसोदा के डर से उलुखलात, उलुखल से धावमानम दौड़े, खुद करके भगे, जसोदा मैया हाथ में लठिया लेकर के इनके पीछे पीछे दौड़ी। पर कृष्ण मैया मुझे मार मत मार, मैया मुझे मत मार, और भगे चले जा रहे। जसोदा मैया अच्छा तुमको आज अच्छी शिक्षा देंगे, परामृष्ट अत्यन अत्यन माने जसोदा जी कृष्ण से भी अधिक दौड़ी, जितना कृष्ण दौड़ रहे हैं उससे कम दौड़ेंगी तो बांध पकड़ नहीं सकती, उतना बराबर बराबर भी दौड़ेंगी अत्यन, कृष्ण से डबल यदि दौड़ेंगी तब तो पकड़ेंगी, इसलिए बड़ी जोर से दौड़ी। तो द्रुत्य गोप्या परामृष्ट, परा माने पीछे, अमृष्टत माने पीछे से जा करके पकड़ लिया, ऐसे सच्चिदानंद गोकुलेंद्र कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। आज यहीं तक रहे, इसकी विशेष व्याख्या हम लोग कल करें। अभी आप लोग सभी लोग तैयार हो जाएं। अंग्रेजी में इन इंग्लिश कौन बोलेगा? यू कैन टेल। कोई शास्त्रार्थ कोई विचार नहीं, जो कोई सब कर रहे हैं वो सब सुनते हैं कि कोई प्रतिवाद नहीं, किंतु वो ऐसे व्यक्ति नहीं। अधर्म से कभी भी सुलहनामा नहीं किया। सजिया सखी भेकी स्मार्त जाति गोसाई, इन लोगों से कभी भी कोई सुलहनामा उन्होंने नहीं किया। भीतर में एक बार में ऐसा नहीं, स्पष्ट रूप से सभा में बोलते। कल हमने थोड़ा सा गेहूं खली मेदिनीपुरी का मेदिनीपुर में हमने बतलाया था, और यहाँ जब पूज्यपाद माधव महाराज जी के यहाँ विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, उस समय में बड़ी विद्वत सभा जुड़ी, और उसमें गुरु जी यहीं पर थे। वो कार्तिक के महीने में शायद हुआ था, वो गुरु जी यहीं थे, उनको भी निमंत्रण किया गया, हम लोग उनके साथ में वहाँ पर गए, और सब लोग वक्ता और वृंदावन के जितने अच्छे अच्छे लोग थे सब लोगों को निमंत्रण किया गया। ये विशेष करके पास ही में रामकृष्ण मिशन का एक अस्पताल है, उसमें वहाँ के बड़े बड़े स्वामी जी लोग उसकी देख रेख करते हैं, कुछ हम लोगों की भी मदद करते हैं, सेवा ज़रूरत होती है तो करते हैं वो लोग, और कोई दूसरा तो वहाँ पर अस्पताल इत्यादि नहीं। तो उनके बड़े बड़े स्वामी जी लोग थे, वो लोग भी निमंत्रित थे, और वैष्णव लोग उपस्थित थे, राधा रमण और ये सब के गोस्वामी लोग भी थे, और हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव के भी बहुत से लोग वहाँ पर थे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध करी करीब आचार्य लोग उसमें आए थे। तो वहाँ पर उनको देख करके, विशेषकर रामकृष्ण मिशन वालों को देख करके, वो एकदम भड़क उठे, और उन्होंने बतलाया ये धर्म के नाम पर कलंक है। हमारे वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से, हमारी भारतीय संस्कृति से इनका कोई भी संबंध नहीं है। विवेकानंद जी धर्म के गुंडे थे, ये भी बतला, धर्म के गुंडे थे। गुंडा माने क्या? मारपीट करके किसी बात को ले लेना या स्थापन करना, धार्मिक गुंडे, सामाजिक क्रियाओं को लेकर के और उसी को धर्म के नाम से प्रचार करते थे। वैदिक सिद्धांतों से, वेदांत दर्शन इत्यादि से कोई उन लोगों का संबंध नहीं। यहाँ तक कि मदिरा मांस भी खाते हैं, और कि तो क्या गोमांस भी खाते हैं। इसलिए जो गोमांस खाता है हिंदू होकर के, वो क्या उन्होंने उसमें बतलाया, ये एक बार अभी भी केस चल रहा था, अभी केस का फैसला हुआ। केस ये था, जो रामकृष्ण मिशन वो भारतीय संस्कृति है न विदेशी संस्कृति है, उन्होंने उसी समय में उल्लेख किया था, भारतीय संस्कृति है या भारतवर्ष का यह धर्म है न विदेशियों की संस्कृति है। उन्होंने कहा नहीं, ये विदेशी है, भारतीय संस्कृति नहीं है। तो उसी समय में केस चल रहा था, उसका डिसीजन अब अभी पेपर में अभी 4-5 दिन हुआ मैंने देखा। तो उसमें रामकृष्ण वालों ने ये कहा था कि हम भारतीय नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं और भारतीय नहीं हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक माने हिंदू नहीं तो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को जो सहायता गवर्नमेंट से मिलती है, विदेशों से मिलती है, ये सब सहायता मिलनी चाहिए, उनके लिए आसन संरक्षित हों और उनके लिए विशेष सुविधाएँ चाहिए, जैसे कि कश्मीर में लोगों को या और सब जगह मिलता है। माना जब हिंदू ही संस्कृति नहीं है, और वो कहते हैं कि हमारा वेद और वेदांत से संबंध है, इधर में गोमांस खाते हैं, गीता और भागवत को नहीं मानते हैं, आई प्रेफर टू प्ले फुटबॉल देन टू रीड गीता, गीता पढ़ना हम नहीं चाहते, हम तो फुटबॉल, उससे तो कसरत से हमारा शरीर ठीक होगा, गीता पढ़ने से क्या होगा? मंदिरों में देवता नहीं, देवता तो गरीबों के हृदय में देवता वास करते हैं, इसलिए दरिद्र नारायण इत्यादि वो कहते हैं। यह पाश्चात्य संस्कृति है, शरीर से इसका संबंध है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। गुरुमान ने खड़े होकर के ये सब बातें जब कहना आरंभ किया, सभा मानो एकदम आग सी लग गई। वो जो थे माधव महाराज जी के पास में पहुंचे, पूज्यपाद माधव महाराज जी के पास में, वो स्वामी जी, महाराज जी ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं? भाई चुपचाप सुन लो, यदि छेड़ दिया, अभी तो कुछ ही नहीं कहा इन्होंने, यदि छेड़ दिया तो न जाने क्या आग बरसाएंगे, और यदि आप में हिम्मत है तो आप कुछ करिए, उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, हमारा ये सीनियर गुरु भ्राता है, हमारे गुरु तुल्य हैं, मैं इनके से कुछ भी नहीं कह सकता इस समय, और वो सिंह के समान में प्रतिभाशाली और बाग्मी है। देखो तो कैसा उदाहरण देकर के, वेद की, उपनिषदों की, विशेष करके वेदांत दर्शन का उदाहरण देकर के ये सब बतला रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यदि है चुपचाप बैठ करके सुन लिया, और यदि कहेंगे तो और न जाने क्या करें। कहते जो लोग भगवान का विग्रह नहीं मानता है, वहां पर मंदिरों में देखेंगे राम कृष्ण, राम कृष्ण माने ये राम वाले नहीं, और कृष्ण ये कृष्ण नहीं, वो किसकी, राम कृष्ण अपने गुरुदेव को, परमहंस को, जो काली के उपासक थे साधारण रूप में, देह देह का संबंध, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए काली की उपासना होती है, वो भी राधा जी की शक्ति की होती तो वो भी एक बात थी। इस तरह से उनके मतों का करीकर खंडन करके हमारे भारतीय संस्कृति राधा कृष्ण की उपासना की, उन्होंने स्थापना की, और मूर्ति, जो लोग भगवान का विग्रह नहीं मानते हैं वो लोग नास्तिक, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। वेदांत में कहा, वेदों में प्रतिमा असी सहस्त्र, प्रतिमा असी कहते हैं वेदांत में, अरे वेदों में तो प्रतिमा का कहीं उल्लेख ही नहीं है, प्रतिमा असी सहस्त्र, प्रतिमा असी सहस्त्र माने सहस्त्र शीर्षा विष्णु की प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं, प्रतिमा माने क्या, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात कृष्ण का शरीर नहीं होता, कृष्ण ही शरीर है। यहाँ पर कृष्ण की ये मूर्ति लगी हुई है, ये कहते हैं ये गलत है, क्या है, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण विग्रह है, ये कहा जाएगा, किंतु कृष्ण का शरीर है, कृष्ण की ये मूर्ति है, ये गलत हो गया। हम लोगों का यह शरीर है ये बात ठीक है, क्यों, शरीर से आत्मा अलग है, इसलिए हमारा माने आत्मा का ये कपड़ा है शरीर है, ये तो कहा जाएगा, किंतु इनमें देह और देही का भेद नहीं होता, उनके लाख दिमाग में ये समझ में नहीं आएगी, जो दूसरों को खिचड़ी परोस करके, वो भी पतली सी, वो भी पुरानी दाल चावल मिलाकर, और खिचड़ी रास्ते पर बैठा करके कहते हैं और फोटो लेते हैं और प्रचार करते हैं अपनी पत्रिकाओं में, अरे यदि दरिद्र ही नारायण तो ले आकर के अपने मंदिर में बैठा करके उनको खिलाओ, दरिद्र न जो कि ऐसे कर्म किए हैं या लंगड़े लूल्हे बने हैं, उनकी सेवा से जो होगा उसे तो जो सुकृति पुण्य कर्म किए हुए हैं, जो अच्छे धनी मानी हैं, उनकी पूजा करने से तुम्हारा और सदगति होगी, उनके दिमाग में ये सब चीजें। अरे नारायण जिनके सब समय लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, वो दरिद्र कैसे होंगे, दरिद्र नारायण कहीं होता है, ये सब नहीं। सोने की पत्थर बाटी एक होता है, सोने की पत्थर बाटी ना क्या है, सुनार पत्थर बाटी, सोने का पत्थर बाटी माने क्या, सोने की पत्थर बाटी, अरे सोना ही है तो पत्थर लगाने के बीच में, या तो कहो जो पत्थर की कटोरी, या कहो सोने की कटोरी, कहो सोने की पत्थर बाटी, सोने की पत्थर की कटोरी, ये क्या चीज, न इधर न उधर। इसलिए इन लोगों का भारतीय संस्कृति से, भक्ति से, भागवत गीता से कोई संबंध नहीं, जानते हैं बस विवेकानंद का करके एकदम चित्त गिर जाते हैं। बहुत भाई एक भारतवर्ष के क्या हुए, अमेरिका में गए, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने कहा एक राउंड गोल बनाया, उन लोगों ने दिया इस पर वक्तृता करो, तो उन्होंने कहा जगत शून्य है, शून्य से सब कुछ हुआ है और अंत में शून्य में मिल जाएगा, यही सब, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ये नहीं है। भारतीय संस्कृति क्या है, पूर्णम इदम पूर्णम मदह पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णम एव अवशिष्य आदाय पूर्णम, पूर्ण है वो, पूर्ण में से एनी संख्या को लो वो वैसा ही पूर्ण ही रहेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमारा पूर्ण से, पूर्ण में से कोई भी संख्या लो वो पूर्ण ही रहेगा, कृष्ण ही वो पूर्ण चीज है, उनसे जितने भी अवतार निकलते हैं वो सभी पूर्ण है। और ये जीव भी तो उनसे निकला, जीव उनसे नहीं निकला, उनकी शक्ति का परिणाम है, इसलिए वो पूर्ण नहीं है। कृष्ण को वहां जो पूर्ण बतलाया गया है वो किस रूप में, उनके जितने भी अवतार निकलते हैं वो सब पूर्ण है, और जो कृष्ण से निकलते हैं वो भी पूर्ण है, जो निकले वो भी पूर्ण है, फिर मिल करके भी पूर्ण है, माइनस कर दो तभी पूर्ण है। और जो जीव भी ऐसा हो जाए ये जीव ही ब्रह्म है, नहीं, वो शक्ति का परिणाम है, शक्ति से निकला है। हम लोग गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव लोग ऐसा थ्योरी करते हैं। वो भगवान के जितने अंश हैं सच्चिदानंद कृष्ण के स्वरूप शक्ति और समस्त शक्तियों सर्वशक्तिमान कृष्ण के अंश हैं, और जीव क्या है, केवल मात्र स्वरूप शक्ति नहीं, तटस्था शक्ति से मिलित जो कृष्ण है केवल वशी का अंश है, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको पूर्ण नहीं कहा जाए। ये सब सूक्ष्म बातें दर्शन शास्त्र की, वेदांत की बातें साधारणों के ये दिमाग में नहीं, अभी हम ही कह रहे हैं, कितने आदमी समझते हैं, नहीं समझते। इसलिए वहां पर जब भाषण देना आरंभ किया है एकदम लाल हो गए, और कोई किसी सब लोग वैष्णव लोग ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और सब लोगों के हृदय में वज्र जैसा लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे हम लोगों के पास में आते हैं, बाबा कैसा लेक्चर दिया, जगत में भारतवर्ष का नाम एकदम प्रतिष्ठित कर, बौद्धवाद का लेकर के वहां पर, ये बौद्ध लोग ऐसे है कि जगत शून्य है, शून्य से निकला है, शून्य में मिल जाएगा, हमारी भारतीय थ्योरी है। इसलिए आजकल हमारे राजनीतिकों की कृपा से आज लौटा हुआ बौद्ध, जिसको शंकराचार्य और भास्कराचार्य ने खदेड़ दिया था भारतवर्ष के पहले बाहर जापान और चीन इत्यादि नास्तिक जगत में, और फिर यहाँ पर पनप रहे। गुरु जी कहते थे, हमने सुना था जो बौद्ध आएंगे कल की, तो वो बौद्धों को मार करके और तब फिर से सत्ययुग का प्रारंभ करें, तो ये बौद्ध लोग तो चले गए हैं, अब कहाँ से आएंगे। अरे देखो तो अब एक एक साथ में 50-50 हजार ये धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन रहे हैं, किस लिए, कुछ आर्थिक सुविधा हो जाएगी। इसलिए तो जो भगवान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, भगवान की स्थिति को नहीं मानता, क्या मानता है ना जाने, इसलिए धर्म से इनका कोई भी संबंध नहीं है, सब लोग एकदम स्तंभित रह गए। ऐसे ही सर्वत्र कोई लाग लपेट रख करके सुलहनामा करके अधर्म से कुछ नहीं बोलते थे। अभी भी हम देखते हैं बहुत जगहों में, अभी मायापुर में पुल बन गया, तो मायापुर से पहले आदमी को नाव से जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल था। अर्थात मायापुर में प्रभुपाद उनका विचारधारा, और इधर में सहजिया और स्मार्थ जाति गोसाई, इनके प्रभुपाद ने कहा इनसे सुलहनामा कोई नहीं, इसीलिए प्रभुपाद को जान से मारने की चेष्टा। अब दोनों सपाट मैदान हुए, गंगा भर गई हैं, अब दोनों बहुत मेल मिलाप हो करके वो उनका ग्रहण कर रहे हैं, सहजियाओं का जूठा लेकर के। आप सब अब कोई अब विचार ही नहीं रह गया, शुद्ध भक्ति का विचार नहीं रहेगा, इसी तरह से कलिकाल आ रहा है। तो ये ऐसे ही धुरंधर व्यक्ति थे, इसलिए गोस्वामी महाराज ने इनका नाम रखा पाषंड गजई सिंह का था। देखो हमारे यहाँ प्रभुपाद जी की पहले आरती नहीं थी, गुरु जी ने लिखा आरती, इसमें कितने सुंदर सिद्धांत और विचार हैं। जय जय प्रभुपादेर आरती निहारी जोग मायापुर नित्य सेवादान का, ये जब गुरु जी ने लिखा हमारी पत्रिका में ये प्रचार ये लिखा गया मायापुर में, परम पूज्यपाद कौन तीर्थ महाराज थे, भक्ति विलास तीर्थ, उन्होंने गुरु जी का यहाँ पर है ना केशवती आनंदे निराजन गाय, इसको हटा दिया और एक दो और शब्द कहीं परिवर्तन करके और अपनी गौड़ीय पत्रिका में छाप दिया और सब जगह प्रचार किया, जैसे भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने इसको बनाया है। तो जब वो पत्रिका उनकी हम लोगों के यहाँ आई तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, ये हमारी लिखी हुई आरती को इतना उनको पसंद है जो उन लोगों ने अंगीकार कर लिया, बस हमारी यही इसी से हमको आनंद है, जो उन लोगों ने जो हमारा विरोध करते हैं और उन्होंने हमारे विचारों को ग्रहण कर लिया, इसे आनंद की बात क्या है। तो उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा जब मैं लिख करके और प्रकट रूप में लिख करके, और हमारी पत्रिका भी वहाँ पर जाती थी गौड़ीय पत्रिका, तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से छपवा दिया। इस जब मायापुर की पत्रिका में मैंने देखा हमारा नाम और दो एक शब्द को बदल करके जो किया, इसमें बहुत आनंदित हुआ और उन्होंने अपना नाम लिख दिया। बहुत आनंद की बात है, इसे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने ये लिखा, प्रभुपाद की ऐसी आरती है, पहले गुरु की बंदन आरती होती है तब भगवान की आरती, पहले कृष्ण और इसकी नहीं आरती, पहले होगी गुरु जी की, तब होगी गौरांग की और तब होगी राधा कृष्ण की, ऐसा नियम होना चाहिए। अभी कोई प्रणाम करते हैं तो पहले गुरु जी का प्रणाम, नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम, गौरचंद्र को प्रणाम, तब राधा कृष्ण को प्रणाम। उसी प्रकार लीला चिंतन में पहले गुरु जी को और अंत में इसके बाद में गौरचंद्र को और अंत में राधा कृष्ण का, यही सब नियम है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की आरती लिखा, उसमें कहते हैं जोग मायापुर नित्य सेवा जन, महाप्रभु की जोग मायापुर नवद्वीप में मायापुर जहाँ पर महाप्रभु जी का जन्म, उसकी सेवा को देने वाला। उसकी सेवा को देने वाला क्या, राधा और कृष्ण मिलित होकर के या राधा भाव दूत कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए मायापुर में, जो उनकी लीला प्रकटित हुई नवद्वीप धाम में, ये श्रेष्ठतम उनकी लीला है। पुरी में जो उनकी लीला है वो मध्यम कोटि की है, और दक्षिण देश में जो उन्होंने प्रचार किया, प्रचार करने की जो लीला है, भक्ति प्रदान किया, नाम प्रदान किया, ये तीसरे नंबर की है। हम लोग कह सकते हैं इसमें कि राधा भाव का आस्वादन उन्होंने पुरी में बैठ करके किया, इसलिए इसी को श्रेष्ठ मान लिया जाए, कह जाए नहीं, क्यों, इसलिए कि जगन्नाथपुरी में क्या कौन गुफा गंभीराय में राय रामानंद और से बैठ करके और भाव में विभोर होकर के उनको ललिता और सखी और विशाखा सखी मान करके राधा जी के भाव को आस्वादन कर, उस समय में महाप्रभु के प्रति लोगों का गौरव कैसा था, सभी लोग सष्टांग प्रणाम कर रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी उनको सष्टांग प्रणाम करते हैं, जितने वहाँ के लोग थे सब उनको सष्टांग प्रणाम करते हैं। उनका ऐश्वर्य देख करके उनकी विचार बुद्धि, विशेष करके सार्वभौम भट्टाचार्य को जो उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया, ये सब जो लीलाएँ हैं ये ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएँ हैं, साधारण आदमी के लिए नहीं, इसलिए ये मध्यम कोटि की हुई। और नवद्वीप में जो लीलाएँ हुई, छोटी छोटी किशोरियों के साथ में छेड़खानी करना, पंडितों पर कुल्ली फेंक देना, वो केशव काश्मीरी को परास्त कर देना, गदाधर पंडित और मुरारी गुप्त से कड़चे और वहाँ की फांकी से उनको परास्त करना, ये सब जो लीलाएँ हैं ये मधुर लीलाएँ। मधुर किसको कहते हैं, ऐश्वर्य किसको कहते हैं, ऐश्वर्य हो चाहे न हो, नरलीला के अनुरूप जो लीलाएं होती हैं उसको कहते हैं मधुर लीला, नरलीला के अनुरूप, चाहे ऐश्वर्य उसमें हो। गोवर्धन धारण किया किंतु कृष्ण 5 वर्ष के लड़के, छोटे से बच्चे, लठ अपनी कानी उंगली पर उन्होंने रख लिया छोटा, इसलिए ये मधुर लीला है। किंतु इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया है, ये तो ऐश्वर्य है, किंतु ऐश्वर्य होने से भी ऐश्वर्य किसी ने कहा नहीं ये कृष्ण भगवान है और ये धारण कर रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, नंद बाबा की ये तपस्या का फल है और उनकी विष्णु पूजा का फल है, आज छोटा सा बालक के ऊपर में ये गोवर्धन अपने आप वहाँ पर उठ गए हैं, ये कृष्ण की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए ये लीला हुई मधुर लीला। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के मायापुर में जो लीलाएं हुई मधुर क्लास की श्रेणी की हैं, और वहाँ पर ऐश्वर्य और उससे भी अधिक उन्होंने नाम प्रचार किया। तो उस सेवा को देने वाली है मायापुर में जगन्नाथ, और सची मैया ने कभी उनको भगवान नहीं माना, माना नहीं माना, जगन्नाथ तो लठिया लेकर के उनको मारने के लिए उनके पिताजी जाते थे, और ये भगवान होते तो सची मैया की दृष्टि में तो वो उनको रोकने क्यों जाती, कभी ये भगवान है तो मारा तो देखें तो कैसे मारेगा, किंतु ये तो भाव आया नहीं, इसलिए वो वहाँ की लीलाएँ मधुर लीलाएँ हैं। सर्वत्र प्रचार धूप सौरभ मनोहर, प्रभुपाद का जो प्रचार था जैसे कि धुएं में अगरु या का सुगंध, धूप बत्ती का ये सुगंध चारों तरफ में हवा मिलकर फैल जाता है, ऐसे प्रभुपाद ने महाप्रभु के आचरित और प्रचारित प्रेम धर्म का समस्त विश्व में प्रचार किया। ये क्या चीज है? धूप सौरभ मनोहर, यही उसका धूप है। बद्ध मुक्त अलिकूल मुग्ध चराचर, उस सुगंध से जैसे भौरे प्रमत्त हो उठते हैं, ऐसे बद्ध और मुक्त जितने भी भक्त हैं, यहाँ पर बद्ध माने बद्ध होने पर भी जीव उन्मुख हैं वो, नहीं तो विमुख नहीं, उन्मुख जीव और मुक्त जीव जो हैं अलिकूल भौरे, ये मुग्ध हैं उस सौरभ को देख करके। भक्ति सिद्धांत दीप जालिया जगते। अब धूप के बाद में हम आरती करते हैं किस चीज से? पंच प्रदीप से। हम लोगों में पंच प्रदीप होता है और जगहों में पंच प्रदीप नहीं होता, और संप्रदायों में उसमें एक लगा करके और उसी में आरती करते हैं। हमारे यहाँ पांच प्रदीप होते हैं। ये पंच प्रदीप किस लिए? पंचरस। पंचरस माने क्या? शांत दास्य सख्य वात्सल्य और ये ज्योति। प्रभुपाद ने जो भक्ति का प्रचार किया उसमें पांच प्रकार की ज्योतियां निकली, उसी ज्योति से ही उनकी हम आरती कर रहे हैं। तो ये भक्ति के सिद्धांत हैं। पंच रस सेवा सीखा तहां थे प्रदीप्त तहां थे। पंच प्रकार की सेवाएं इसमें प्रदीप्त है, उस प्रदीप्त के द्वारा प्रभुपाद की आरती के द्वारा इन पांचों रसों के द्वारा महाप्रभु की सेवा मायापुर में हो रही है, उसको ये देने वाली है। पंच महादीप जथा पंच महाज्योति, पंच जो